ఓం శాంతి. ఆప్ సభీ మురళీ సున్నే ఆతే హై తో సభీ స్నాన్ కర్కే ఆతే హై యా కోయి ఐసా హై జో బినా స్నాన్ కే ఆతా హై నహీ? లేకిన్ జ్ఞానియో కా కౌన్ సా స్నాన్ హై? యోగ స్నాన్. మతలబ్ మురళీ సే పేలే ఆధా ఘంటా యోగ. తో అమీర్ చంద్ భాయి జీ కేతే తే కి మురళీ సే పేలే అగర్ హమ్నే ఆధా ఘంటా యోగ నే కియా तो हमने स्नान करके मुरली नहीं सुनी. तो अगर आधा घंटा हम योग करके फिर मुरली सुनते हैं तो सोचो कि हम स्नान करके मुरली सुनते हैं. तो धारणा भी अच्छी होगी, उमंग उत्साह भी आएगा. तो मुरली सुनते समय मान लो यहां टाइम भी नहीं मिलता है बैठने का, तो भी हम स्मृति तो रख सकते हैं ना. मुरली सुनने से पहले आधा घंटा एक घंटा कौन सी स्मृति में सुनेंगे? मैं गोडली स्टूडेंट हूं. नशा चढ़ाना अपने आप को चलते फिरते या बैठ के जो भी है, जिससे कि जब बाबा मुरली चलाए तो एकदम धारण हो जाए. तो मैं गोडली स्टूडेंट हूं और स्वयं भगवान परम धाम से केवल मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कि ये चिंतन करना है कि और किसी के लिए नहीं, केवल मेरे लिए आ रहा है. और आज जो भी बाबा मुझे बोलेगा वो सारा का सारा हप कर जाऊंगा मैं. और चिंतन को बढ़ाना है कि जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्तों ने क्या क्या जतन किए, कितने यज्ञ तप दान पुण्य न जाने क्या क्या किया. कोई एक टांग के ऊपर खड़े रहे, कोई अग्नि के ऊपर लटक के तपस्या कर रहे हैं, कोई पानी में जल समाधि लेके तपस्या कर रहे हैं, कोई धरती में, लेकिन उनको एक झलक नसीब नहीं हुई. राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया लेकिन फिर भी भगवान की एक झलक नसीब नहीं हुई. और मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं कि जिसे भगवान रोज चार पेज का लव लेटर लिखता है और रोज वरदान देता है. एक मुरली में कितने वरदान होते हैं, तो हम सब कितने भाग्यवान हैं. और एक एक रतन जो है पद्मों की कमाई कराने वाला है. एक रतन भी अगर हमने मिस किया तो क्या हुआ, वर्तमान और भविष्य में कमी की है. तो इतना महत्व रख के हम मुरली सुने. और मुरली सुनने समय बुद्धि में ये हो कि भाई आज जो भी बाबा बोलेगा वो मुझे धारण करना है. तो अगर ये स्मृति हमारे मन में रहेगी तो क्या होगा, एक जागृति भी रहेगी और उसको धारण भी हम करेंगे. और वैसे ही हम मान लो कि बिना स्मृति बिना जागृति के हम सुनते हैं तो बाबा पता नहीं क्या 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 बोल भी जाता है, हमें याद भी नहीं रहता है. तो हमें बार बार मुरली सुनते हुए भी हमारा जो मुरली सुनने का जो समय है वो भी योग में कन्वर्ट हो जाए. और उसकी विधि क्या है, बार बार ये स्मृति बनी रहे मुरली सुनते समय कि मैं गोडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूं. मैं आत्मा राजा मस्तक सिंहासन पे बैठ के ऊंचे से ऊंचे भगवान की मुरली सुन रही हूं. भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूं. एकदम समाते जाओ. सुनाने वाले को नहीं देखना है, लेकिन ये महावाक्य किसके हैं ये बुद्धि में लाना है. तो फिर उतना ही महत्व होगा, नहीं तो हम मुरली सुनते रहते हैं, हमारे में वो साधारणता आती रहती है. तो बार बार ये प्रैक्टिस करते रहना है कि कौन पढ़ाने के लिए आ रहा है. केवल ज्योतिबिंदु नहीं, लेकिन जो सर्व सिद्धियों का दाता है वो मुझे पढ़ाने आ रहा है. जो सर्वोच्च सत्ता है वो मुझे पढ़ाने आ रहा है. जो सभी धर्म पिताओं का भी परम पिता है वो मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है. जो संकल्प से ही सब कुछ कर सकता है वो मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है. जिसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है वो भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है. जो सर्व समस्याओं का समाधान प्रदान करने वाला है वो भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है. तो क्या होगा, जब हम बाबा की विशेषताओं को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा ना, कौन पढ़ाने आ रहा है. जो ज्ञान का सागर है वो पढ़ाने के लिए आ रहा है. जैसे सागर पे लकीर खींचो तो क्या होता है, ठहरती नहीं है ना, ऐसे ही भगवान मुझे पढ़ाते हैं. इसलिए मेरे पे कोई भी समस्या विघ्न आता है तो मेरे ऊपर ठहरता नहीं है, क्योंकि मां स्वयं सागर पढ़ाने आता है. तो इस तरह से अपने को नशा चढ़ाना है. एक घंटे में अपने को ऐसा नशा चढ़ा के इतना उमंग उत्साह में ला दो कि बाबा जो कहे वो एकदम अंदर चला जाए. तो जो भी बाबा की विशेषता है वो याद करते हुए कि बाबा कौन है, केवल ज्योतिबिंदु नहीं है लेकिन बिगड़ी को बनाने वाला है और जिसको सारा संसार याद करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भगवान मुझे पढ़ाने आ रहा है। और वो कल्प में एक ही बार आता है, ये नहीं कि हर बार आता रहता है, पूरे कल्प में 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं। तो मुझे कितना ध्यान से पढ़ना है, और ये जो संस्कार मैंने इस समय बना लिए वो पूरे कल्प चलेंगे, जो इस समय वो शक्ति भर ली वो पूरे कल्प चलेगा। इसलिए यही समय है भगवान जैसे संस्कार बनाने का। तो बार बार यह स्मृति बनी रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, भगवान का लाडला स्टूडेंट हूं। एक एक महावाक्य जो है लाखों की कमाई कराने वाला, पद्मों की कमाई कराने वाला है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, याद से तुम पुरुषोत्तम बनते हो, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से क्या बनते हो, पद्मपति बनते हो। तो आप सोचो कि हम पद्मपति बन रहे हैं। और आज बाबा ने क्या बोला, क्या मीठा बनने का बोला, हाँ, मोस्ट विलवेड बाप आया है, क्या करने आया है, कड़वी दुनिया को, कड़वी दुनिया को क्या बनाने आया है, स्वीटेस्ट। तो हमें भी क्या करना है, बाप और वर्षे को याद करना है, तो हम भी स्वीटेस्ट बन जाएंगे। और बाबा ने आज प्रसन्न में क्या बोला, परफेक्ट बनने के लिए 5 बातें बताई थी, तो वो कौन सी थी, पहला क्या था कि अपने अंदर जो भी खामियां है उसको निकालना है। पहला ये बताया कि अपने अंदर जो भी कमियां है खामियां है उसको निकालना है। दूसरा क्या बताया, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। और तीसरा क्या बताया, बाप की याद का करंट लेके भूतों को भगाने का पुरुषार्थ करना है। और चौथा क्या बताया, दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी सर्विस भी करनी है। और मुरली के अंदर भी बताया कि दूसरों की सर्विस करना मतलब अपनी सर्विस करना, लेकिन अपनी सर्विस करना है तो हम दूसरों की भी अच्छी कर पाएंगे। और पांचवी बात क्या बताई, बाप को कितना समय याद करके अथा सुख पाते हैं, और सतो प्रदान कितने बने हैं, अपने आप से पूछना है। तो ये 5 बातें हैं। तो संकल्प करना है कि मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, तो पहली बात को अपनी बुद्धि में लाना है कि मेरे में कौन कौन सी कमियां है। अगर दूसरा कोई बताएगा तो क्या होगा, हम उस पर गुस्सा कर सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं कि खुद को देखने गए। लेकिन अगर खुद ही खुद को बताएंगे कि मेरे में ये कमी है, ज्यादा सोचने की कमी है तो लिखो, चिड़चिड़ापन की कमी है लिखो, दुख देने की कमी है लिखो, किसी को तंग करने की कमी है लिखो, मान सान प्राप्त करने की इच्छा है लिखो, क्या है जो मुझे तंग कर रही है अंदर। तो अंदर में हर एक व्यक्ति को अपना अपना पता है, तो वो लिखो और फिर चिंतन करो कि इस कमी को मैं कैसे दूर करूं, इस कमी के लिए बाबा ने क्या क्या बोला हुआ है। जैसे बाबा ने कहा क्रोध मुक्त बनो, उसके लिए सहनशील बनो। तो अब मुझे मान लो सहनशील बनना है, तो उसके लिए क्या सोचूं मैं, तो एक तो ये सम्मान ले लो कि मैं सहनशीलता की देवी या देवता हूं, मुझे हर हाल में हर बात को सहन करना है। और सहन करने से क्या फायदा होगा, एक तो सहन करने से सहन शक्ति बढ़ेगी, सहन करने से औरों का स्नेह भी हमको प्राप्त हो जाएगा, सहन करने से एक मुरली बाबा ने कहा है कि अगर आप किसी का सहन करते हो तो भगवान की 100 गुना आशीर्वाद मिलती है। तो अगर मान लो कि किसी की बात गलत या सही जो भी सहन कर लो, तो भगवान की अगर 100 गुना आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या है। और सहन करेंगे तो सहिंसा बनेंगे, सही है ना, और वैसे भी सहन तो करना ही पड़ता है, तो खुशी खुशी सहन कर लो। अगर आपको मान लो किसी ने कुछ बोला, आपने सहन कर लिया तो आपने सब कुछ बचा लिया, भगवान की आशीर्वाद भी प्राप्त कर ली, लेकिन आपने सहन नहीं किया तो क्या किया। मान लो आप बोलोगे उसको कुछ न कुछ, और संबंध खराब होंगे, कोर्ट कचहरियों तक आप जाएंगे, तो भी सहन ही तो कर रहे हो, मन में जो तनाव पैदा हो रहा है वो भी सहन, फिर कोर्ट कचहरियों में जो चक्कर लगा रहे हो, पैसा लग रहा है वो भी तो सहन ही कर रहे हैं ना। तो अगर आरंभ में ही सहन कर लें तो बात ही समाप्त हो जाए, जैसे कम आग लगती है, एक तीली है मान लो आपने जलाई और उसी टाइम आप चाहो तो बुझा सकते हो, लेकिन वो जब फैल जाती है तो फिर अगर हम सोचे कि अभी इसको खत्म करें तो बहुत मुश्किल होता है। तो व्यक्ति आजकल डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, पहले तो बड़ी गहराई से उस बात को सोचते रहते हैं, बाद में सोचा कि छोड़ो कि क्या रखा है इस बात में, लेकिन फिर मन मानता ही नहीं है। आप छोड़ना भी चाहो तो छूटेगा ही नहीं, होता है ना कि मन ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको महसूस हो गया कि भाई इससे तो मेरा बहुत हेडक हो रहा है कि कोई फायदा नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं इस चीज को दे दूं, ये जिस चीज के कारण से मुझे तनाव हो रहा है इस चीज को दे दूं, लेकिन फिर भी क्या होता है हम चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। मतलब सोच एक बार आपने चला दी ना, एक बार ट्रेन को आपने दौड़ा दिया, उसके बाद ब्रेक लगना बहुत मुश्किल होता है। तो समझदारी इसी में है कि पहले से ही जैसे ही वो बात आए उसी टाइम सहन कर लो तो भगवान की सौगुना आशीर्वाद भी मिल जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी, और जिसका भी हम सहन करते हैं उससे सने भी बढ़ जाएगा और वो संस्कार बन जाएगा सहन करने का। जैसे किसी को मान लो कि जवाब देने का संस्कार बन जाता है तो बात बात में जवाब देता है और सबसे संबंध खराब कर बैठता है, और किसी को सहन करने की आदत पड़ गई तो अपने मन में भी शांति बनी रहेगी, उसके संस्कार भी वैसे पड़ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि बात आई और तुरंत ज्ञान का प्रयोग कर दो तो बात चली जाएगी, ठीक है ना। और बाबा ने मीठा बनने के लिए क्या क्या बोला है, क्या क्या लाभ है मीठा बनने से, मीठा बनने से क्या क्या लाभ है। एक तो बाबा ने कहा है कि मीठा बनोगे तो बाप की याद भी सहज होगी, तीर भी लगेगा, जिसको भी ज्ञान सुनाओ उसको तीर लगेगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको ज्ञान सुनाने के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उनको अच्छा लगेगा इनसे बात करने का क्योंकि वो इतने मीठे होंगे। और जो थोड़ा गुस्से वाला होता है तो उससे दूरी बना के रखते हैं कि भाई पता नहीं किस समय ये बम डाल दे, हर एक व्यक्ति डरता है ना। तो मीठा बनने का एक फायदा तो ये है कि सभी के हम प्रिय बन जाएंगे और भगवान से वरदान मिल जाएगा हमको, जैसे आज बाबा ने कहा ना, तो मीठी मीठी सजनियों को बाप वरदान देते हैं पद्मपति बनने का, और मीठे मीठे सपूत बच्चों को बाप वरदान देते हैं। तो भगवान भी वरदान कब देंगे, जब हम मीठे बनेंगे। और मीठा कैसे बना जाए, बाबा ने मीठा बनने की भी विधि बताई ना। हाँ, जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना मीठा बनते जाएंगे, और स्वीट होम को याद करेंगे तो स्वीट बन जाएंगे। तो बार बार ये स्मृति बनी रहे कि मैं स्वीट होम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, चलते फिरते उड़ते तो वहां स्थित होने से भी आप स्वीट बन जाओगे, और स्वीट बाबा का बच्चा हूं मैं, स्वीट होम निवासी हूं और स्वीट होम बाबा का बच्चा हूं, उसकी छत्र छाया के नीचे हूं, उस प्रेम के सागर से वो प्रेम की किरणें आ रही है। और स्वीट बनने के लिए क्या करना है, सुनाई नहीं दे रहा है इतने, हाँ स्वीट राजधानी को भी याद करना है। भगवान का लक्ष्मी नारायण का मुखड़ा अपने सम्मुख लाओ, कहा ना उस ड्रेस को जैसे खूंटी पे टकी हुई है ऐसा देखो, तो अपने को सत्युग में बैठे हुए सिंहासन पे बैठे हुए देखो कि मैं सत्युगी सिंहासन पे विराजमान हूं, विश्व के सिंहासन पे मेरे सर पे डबल ताज है और मैं एकदम स्वीट हूं। अब देखो देवी देवताओं को जो है चारों प्रकार का सुख होता है, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि आज तक देवी देवताएं अभी रहे नहीं है लेकिन आज भी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं कि भाई कल भी तो गया था लेकिन वो सत्यम स्वयं सुंदरम ने इतना स्वीट बनाया कि आज तक भी उनकी मूर्तियों के लोग दर्शन करते हैं। तो मन से वो स्वीट बने थे, चेहरे से भी वो स्वीट बने थे, तो आज तक भी दो लोग दर्शन करने जाते हैं, और तन से भी वो स्वीट बने थे। इसलिए कोई भी देवता को आपने ऐसा फोटो नहीं देखा होगा हॉस्पिटल में भर्ती और बॉर्डर चढ़ रही हो, कोई देखा, मतलब इतने स्वीट बने कि उनको कोई रोग नहीं था, और न बहुत ज्यादा लंबाई थी, न बहुत ज्यादा छोटे थे, न बहुत ज्यादा मोटे थे, जैसा एकदम परफेक्ट होना चाहिए शरीर वैसा शरीर था मतलब उनका। आजकल तो कोई काला है, कोई गोरा है, कोई टेढ़ा है, कोई बांका है, होता है ना, परफेक्ट कोई भी नहीं है। और वहां पे लक्ष्मी नारायण को बस देख लिया ना, उनका मुखड़ा देख लिया, उसमें ही जैसे कि बस भगवान से मिल लिया ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि भगवान के सारे गुण विशेषताएं उनके अंदर होगी, इसलिए वहां लक्ष्मी नारायण से मिलने की भी लाइनें लगेगी। और देखो जन का सुख, लक्ष्मी नारायण इतने लायक बने थे कि जन का भी उनको सुख था, कि साधु हो या महात्मा हो सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। साधु महात्माओं के आगे हम लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के आगे साधु महात्माएं भी नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनके पास दोनों पावर था, राज सत्ता भी था, धर्म सत्ता भी था, इसलिए दोनों के दोनों नतमस्तक होते थे। तो अभी बाबा हमको भी धर्म सत्ता भी हम ले रहे हैं और राज सत्ता भी ले रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण को क्या सुख था? तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख और जन का भी सुख, चारों प्रकार का। धन दौलत भी उनके कैसे सजी सजाई दिखाते हैं, कितने स्वीट लगते हैं, लगते हैं ना। तो आज धन है पर धन का सुख नहीं है, संबंध है पर संबंधों का सुख नहीं है, संपत्ति है पर संपत्ति का सुख नहीं है, ऐसे ही वहां पे हर चीज होगा। मन है पर मन का सुख नहीं है, यहां पे मन में चिंता, उदासी या ज्यादा सोचने के संस्कार या दूसरों के अवगुण देखने के संस्कार आदि आदि होते हैं, तो हम क्या है, दुखी और परेशान होते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखना है, उस दुनिया को देखना है कि वहां पे कैसा होगा मैं, शरीर भी एकदम प्योर, आत्मा भी एकदम प्योर, प्रकृति भी एकदम सतो प्रदान, साइंस के जो साधन भी होंगे वो भी एकदम परफेक्ट होंगे, पशु पक्षी या और जो भी कुत्ते बिल्ली इतने सुंदर सुंदर होंगे, उनकी भी मुस्कुराहट ऐसी होगी कि एक बार उनको भी देख लो आप तो जी प्रसन्न हो जाता है। जैसे कलयुग के अंत में ही देख लो आप, छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं कई, कितने मतलब एक्टिंग करते हैं कि लोग जो भगवान को भूल के उसी में लगे रहते हैं, जिन्होंने भी कुत्ते पाले हुए हैं, होता है ना, वो इतने प्यारे होते हैं या वो इतने आपको प्यार देते हैं। तो आप सोचो कि जब कलयुग के ये पिल्ले बिल्ली बिल्ले भी इतना सुख देते हैं, तो सतयुग के पिल्ले पिल्ली और जो पशु पक्षी होंगे वो कितने सुंदर होंगे और कितने सुंदर सुंदर उनकी आवाजें होगी, है कि आजकल टेलीविजन देखने की वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नेचुरल टेलीविजन आपका चलता रहेगा। महल इतने सुंदर सुंदर होंगे, एकदम उसमें हीरे जड़ित होंगे, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गार्डन होंगे, खुशबू आती रहेगी इधर से भी उधर से भी, जिसको देखो उसके चेहरे से भी खुशबू आएगी, उसके शरीर से भी खुशबू आएगी, उसकी आत्मा से भी खुशबू आएगी। तो ऐसी मीठी दुनिया के अंदर बाबा हमको ले जा रहा है। तो जिस दुनिया को भगवान बना रहा है वो कितनी सुंदर होगी, कितनी परफेक्ट होगी। तो अभी हमको परफेक्ट बनाने के लिए ये पांच बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कौन सी? पहला तो कमियां देखना है, उसको निकाल देना है। दूसरा, मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है। तीसरा, याद की करण से भूतों को भगा देना है। और चौथा, दूसरों की सेवा के साथ साथ अपनी भी सेवा करनी है। और कितने, पांचवी क्या थी? हाँ, कि अपने आप से पूछना कि मैं कितना समय बाप को याद करके अथाह सुखों का अनुभव कर रहा हूं और सतो प्रदान कितना बना हूं। अपने आप से पूछना है कि मैं कितना सतो प्रदान बनाऊं, मेरे में कितनी अंदर में नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी आई है ज्ञान में आने के बाद, मन में मेरे क्या चल रहा है, हर एक व्यक्ति खुद ही जान सकता है। और धारणा के लिए क्या था? हाँ, बाबा ने यह भी कहा है कि देश सहित अपना जो भी ककपन है वो क्या करना है, ईश्वरीय बैंक में जमा करा दो, सेफ हो जाएगा। दुनिया में भी जिनके पास वो हीरे या जवाहरात होता है तो वो बैंक में रखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम वैल्यूबल हो हीरे, इस संसार के सबसे हीरो एक्टर हो, वैल्यूबल हीरे हो, तो आपको भी कहां जमा करना, अपने आपको बाबा की बैंक में जमा करना है, नहीं तो क्या करेंगे लोग लूट के ले जाएंगे। अगर मान लो लक्ष्मी नारायण यहां आ जाए, मान लो उसी वेश में, तो क्या कोई छोड़ेगा उनको? अगर वो निकल जाए मान लो कहीं पे, तो कोई भी लूट लेगा उनको। इसलिए अब हम भी जो है इतने स्वीट है कि जो भी खजाने हैं हम खुद हमारा जीवन ही हीरे तुल्य है, तो बाबा की बैंक में अपने आप को जमा करा देना, ठीक है ना। और क्या था हैं? हाँ, फ्लोलेस, जो भी फ्लो है वो सब निकाल देना है। उसके लिए क्या करना है? हाँ, अंतर्मुखी बन के जो भी देह अभिमान की खामियां है उसको निकाल देना है। तो अंतर्मुखी अंदर में जाना है और देखना है कि मेरे में किस किस प्रकार का देह भान है, खुद ही खुद को चेक करके उसको निकाल देना है। दूसरा क्या था? क्या था? अशांति नहीं फैलानी है, शांत रहना है, अशांत नहीं होना है और शांति फैलानी है, यही था ना। अशांति नहीं फैलानी है। और क्या था वरदान? क्या था? प्राप्तियों की इच्छा से भी इच्छा मात्रम अविद्या बन, भरपूर बनने वाले कौन? निष्काम सेवाधारी भव, यही था ना। प्राप्तियों से भी इच्छा मात्रम अविद्या बन, सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव, ये था ना। और वरदान का मसाला क्या था? कि जो निष्काम सेवाधारी होते हैं वो उनको ऑटोमेटिकली प्राप्तियां सामने आती है उनकी, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन वो प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आप इसी समय स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा? सदा ही आप खालीपन महसूस करोगे, कुछ लगेगा कमी है क्या। इसलिए प्राप्तियों की इच्छा से भी इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो लगेगा कि मैं भरपूर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। और फिर बाबा ने कहा है कि कौन सी प्राप्तियों के झूले में झूलना है? जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, इन प्राप्तियों में, अविनाशी प्राप्तियों में क्या करना है? प्राप्तियों के झूले में झूलना है तो क्या होगा? कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी हमारे से। और स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था ना, अव्यक्त स्थिति में स्थित होके अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होके अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति को पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और बाबा ने एक मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात अंदर में बताई है कि 8 घंटा योग करना है, 8 घंटे कामकाज करना है, धंधा धोरी, और 8 घंटे सोना है। तो ये काम सरल है या कठिन है? उसकी विधि है, मैंने करके देखा है तो बहुत सरल है। देखा जाए तो कैसे सरल है वो बता देता हूं कि सवेरे आप कितने बजे उठते हैं वहीं से चार्ट बना लो कि 4 से 5 मुझे क्या अभ्यास करना है, 5 से 6 मुझे क्या अभ्यास करना है, 6 से 7 मुझे क्या अभ्यास करना है, 8 से 9 मुझे क्या अभ्यास करना है। तो केवल आपको वो स्मृति में लाना है, जैसे ही मान लो मुरली का टाइम हो, केवल आपको इतना ही सोचना है मैं गॉडली स्टूडेंट, बस आपको बाबा याद रहेगा। कभी आप ये संकल्प कर लो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की छत्र छाया के नीचे हूं, बस इतना ही तो करना ना। काम काज करते रहो और केवल बार बार याद दिलाते रहो तो आपका योग हो गया। कभी ये संकल्प करो कि मैं विश्व और ब्रह्मांड की भी मालिक बनने वाली आत्मा हूं, बस इतना ही याद कर लो तो बाबा याद है आपको। कभी ये संकल्प करो कि मैं खुदाई खिदमतकार हूं, खुदा की तरफ से खिदमत करने के लिए उपस्थित हूं, केवल एक ही तो पॉइंट याद करना है। तो केवल एक पॉइंट याद करेंगे उसमें ही आपको बाबा याद हो जाएगा। केवल आपको स्मृति रखनी है, और चाहो तो आप चार्ट भी लिख सकते हो कि इस घंटे में मैंने कितना अटेंशन रखा इस बात पे। तो आप देखेंगे आपके पास 18 घंटे हो जाएंगे योग। आप तो 8 घंटे की बात कर रहे हो, लेकिन आप रात को चेक करोगे तो 18 घंटे हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी अटेंशन रखा तो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और सुबह शाम 2 घंटे बैठ के, बाकी चलते फिरते करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा अनुभव भी होगा, आपको लगेगा कि मुझे भगवान मिला है। जब तक 8 घंटे योग नहीं होता है तो लगता है कि जैसे कि भक्ति वाला ही सिस्टम चल रहा है, लेकिन जब आपका योग का चार्ट बढ़ जाएगा तो आपको लगेगा कि जैसे बाबा मुझे मिला है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है और मेरे साथ में है। इतनी मन में शांति होगी, उतना आनंद होगा, इतना सुख होगा कि आप खुद ही जो है, बाबा कहते हैं ना ऐसे शरीर बन के मुझे याद करो तो क्या होगा, तुम्हारे सारे कले सब कुछ मिट जाएगा। तो बस अभी भट्टी में आए हो तो यहां पे ये 3 दिन अनुभव कर लो, तो अगर ये 3 दिन अच्छी तरह से अनुभव कर लिया तो फिर वहां हर महीने कर सकते हो। ठीक है, ओम शांति।